आज सुबह से हमने हीलिंग को रिलेटेड बहुत सारी बातें सुनी हैं, वो सब किसी और के अनुभव थे, लेकिन अनुभव से ही तो हम सीखते हैं ना, राइट? अनुभव से सीखते हैं। तो एक मिनट साइलेंस में ये लें कि इसमें से मैंने अपने लिए क्या लेना है। हाउ डज इट वर्क इन माय लाइफ, हाउ डज इट वर्क इन माय लाइफ। एवरीबडी सीधा होकर बैठे। अब हमने विधि सीखी है कैसे करना है। दो पावर्स यूज कर रहे हैं हम, एक संकल्प की शक्ति और दूसरा विजुअलाइजेशन पावर। और यही हम कल सुबह से कर रहे थे कि एक मिनट में क्या करना है, विजुअलाइज करना है और वो संकल्प क्रिएट करना है। जब दोनों चीजें इकट्ठे यूज होंगे तब परिवर्तन स्टार्ट होगा। तो चलो एक मिनट में, ये एक मिनट की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये हॉस्पिटल में बीच बीच में हमें करनी है, ये बीच बीच में करनी है, सिर्फ सुबह नहीं करनी है, सिर्फ रात को नहीं करनी है, बीच बीच में करनी है। बीच बीच में करने से क्या होगा, वॉट विल हैपन, एनीबडी क्या करेंगे अगर हम बीच में वन मिनट के लिए करते हैं तो क्या होगा? ये प्रैक्टिस क्या कर रही है, हम ईगो कॉन्शियसनेस की दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है? तो ईगो कॉन्शियसनेस की दुनिया की वाइब्रेशन थोड़ी सी लो है। जब हम उस वाइब्रेशन पर होते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी हो गई है, जो हमने कल देखा कि हम हर बात के लिए बाहर के जगत को निर्भर सिखाते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। अब जैसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस एक मिनट के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, उस एक मिनट के लिए हम इस ईगो कॉन्शियस की दुनिया से क्या हो रहे हैं, डिटैच होके ऊपर आ रहे हैं। जितनी बार उससे डिटैच होंगे आपकी डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी। इट इज लाइक सपोज सीढ़ी की रेलिंग है, मेरा शरीर कमजोर है तो मुझे उस रेलिंग को पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है, दैट इज माई फिजिकल डिपेंडेंसी। ओके, सो इट हैज बिकम नॉर्मल फॉर मी कि आई हैव टू होल्ड दैट रेलिंग एंड देन वॉक। लेकिन पर इतना करते करते आदत ही पड़ जाती है कि उसको पकड़ के ही चलना है, उसके बिना नहीं चल सकते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से वो नहीं छूट सकती है, लेकिन हम चलते चलते बीच में क्या कर सकते हैं, पकड़ के चल रहे हैं रेलिंग, चलते चलते बीच में क्या करना है, छोड़ना है उसको थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए भी जब छोड़ेंगे और दो सीढ़ी भी चढ़ेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। कल फिर हम दो मिनट के लिए छोड़ेंगे और थोड़े दिन करते करते अब वो रेलिंग की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कब शिफ्ट हो गए, हमें पता नहीं चलेगा कि हम डिपेंडेंसी से कब इंडिपेंडेंट हो गए, पता कब चलेगा। वो ही वाली बात आएगी जो पहले आती थी, लेकिन आज आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा चेंज हो सकता है। इट इज ओनली बिल्डिंग अप स्टैमिना। तो कैसे करना है, एक मिनट में ऐसे करना है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कर रहे हैं। इसीलिए छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपको अपने बच्चे को याद करना है, एक सेकेंड करो, बच्चे को याद करो, आंखें बंद करे बिना याद करो। हो सकता है, हो सकता है। और याद कैसे किया, क्या आया सामने, क्या आया सामने, याद किया मतलब क्या किया, क्या आया सामने, विजुअलाइज किया, फेस ही आया होगा सबसे पहले सामने। तो वो फेस सामने आने के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ी, नहीं। तो आप चलते फिरते बीच बीच में भी अपने बच्चे को याद कर सकते हो। किसी को पता चलेगा कि आप याद कर रहे हो, पता चलेगा किसी को आप याद कर रहे हो? बस ऐसे ही भगवान को याद करना है बीच बीच में। अगर आंख बंद करके किया तो फिर तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब क्या करते हैं बीच में, हाँ ये क्या करते हैं, पेशेंट को लगेगा कि वो इनको आता नहीं है क्या, भगवान से पूछ रहे हैं क्या क्या इलाज करना है। वैसे एक चीज ये आप कर सकते हैं, इसको करके देखिएगा, आपको सब कुछ आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको रटा हुआ है कि इसको क्या बोलना है और कौन सी दवाई खाने को बोलना है, वो आपको पता है। लेकिन अगर आप एक सेकेंड के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले, अगर आप सिर्फ एक सेकेंड, एक मिनट भी नहीं, एक मिनट नहीं रुक सकते उस टाइम पे, एक सेकेंड के लिए आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, आप बताओ इनके लिए क्या लिखना है। कितना टाइम लगेगा इतना सा बोलने के लिए? आप बताओ इनके लिए क्या लिखना है। हो सकता है ऐसा एक सेकेंड निकल जाएगा बीच में? क्या आपको लगता है कुछ होगा? आपको लगता है कुछ होगा? कुछ होगा? आंसर तो फिर भी पता है, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे आप बताओ इनके लिए क्या लिखना है, दो चीजें होंगी। एक, कभी कभी हो सकता है जो आपने सोचा था उससे डिफरेंट थॉट आएगा, और दूसरी चीज होगी अगर जो आपने सोचा था वो ही आप लिखेंगे, लेकिन क्योंकि आपने उसको याद किया लिखने से पहले, तो आपके लिखने में उसकी शक्ति भी साथ में आ गई, और जो सामने बैठा हुआ है उसको आपसे उसकी शक्ति मिलेगी। अभी सुनाया ना कि आपकी शक्ति से ठीक होने लगेंगे लोग, लेकिन आपकी शक्ति से ठीक तब होने लगेंगे जब हमारी शक्ति क्या हो रही होगी, हमारी बढ़ेगी, तब उनको वो शक्ति मिलेगी ना। और उसको बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, पावर हाउस की शक्ति को बगात में लेते रहना है। अगर आपसे कोई बहुत सीनियर डॉक्टर आपके साथ में खड़े हुए हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर वो सीनियर आपके सामने खड़े हैं तो आप एक सेकंड उनकी तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखेंगे ना। तो वो जो एक तरफ आप देखते हैं ना, एक सेकंड उनकी तरफ, उनकी ब्लेसिंग्स आपके उस इलाज में आ जाती है। पता तो सब कुछ है, आप घर पे खाना बना रहे हैं, रोज खाना बनाते हैं, लेकिन आपसे बड़े कोई साथ में खड़े हुए हैं तो आप उनकी तरफ ऐसा देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बनाना ना। तो हमें तो आता है ना, लेकिन इसमें पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ही उस तरफ देखा तो उनकी वो दुआएं, उनकी वो ब्लेसिंग्स भी उस चीज के अंदर आ जाती है। तो बीच बीच में कनेक्ट होते रहना है। किससे कनेक्ट होते रहना है? किससे कनेक्ट होते रहना है? परमात्मा से कनेक्ट होना है। जो अपना इलाज करवाने आता है वो तो कनेक्ट होता रहता है, उसको तो इतना डर लग रहा होता है, भगवान जी आप आ जाना साथ में, सब ठीक हो जाए। लेकिन जो इलाज करने वाला है उसको होना है। और जैसे ही आप खुद को आत्मा देख उधर कनेक्ट करेंगे, आप उस आत्मा की वाइब्रेशन से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। आप उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट करेंगे, और फिर आप दोनों की वाइब्रेशन उस आत्मा को मिल जाएगी। इट्स ऑल गोइंग टू हैपन इन वन सेकेंड। इट्स ऑल गोइंग टू हैपन इन वन सेकेंड। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो जो कल हमने देखा था कि जो अक्रॉस द टेबल आ रहे हैं वो थोड़ा सा दर्द में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उधर कनेक्ट हो जाएंगे तो वो वाली एनर्जी यहां पर नहीं आएगी, ये वाली एनर्जी उनको जाएगी। तो रिसीवर बनने के बजाय हम ट्रांसमिटर बनना शुरू हो जाएंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन आप इमोशनली नहीं थकेंगे, क्योंकि इमोशनली बीच बीच में क्या करते गए, क्या करते गए, चार्ज करते गए, बार बार अपने आप को चार्ज करते गए। कभी कभी हम कहते सुबह इतनी देर मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है, दैट्स फाइन। पांच मिनट मिल सकते हैं, पांच मिनट मिल सकते हैं। हमें किस किस की हीलिंग करनी है? हमने पहले खुद की हीलिंग करनी है, हमने बॉडी की हीलिंग करनी है, हमने रिश्तों की हीलिंग करनी है, और हमने औरों की हीलिंग करनी है, और हमने प्रकृति की हीलिंग करनी है। ये सारी हीलिंग यहां से होने वाली है, यहां से होने वाली है। आज सुबह से आपने सीख लिया कि अपने संकल्प कैसे लिखने हैं, राइट? अब थोड़े से अपने पर्सनल वाले लिख लेते हैं। संकल्प से सिद्धि कैसे वर्क करता है वो आ गया आज सारा दिन के अंदर? किस किस को क्लियर हो गया कैसे वर्क करता है संकल्प से सिद्धि? यू नीड एनी मोर प्रूफ फॉर दैट? सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या होता है? सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? खुद का एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस। कोई भी चीज को बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं हो, क्योंकि तब तक वो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन उनके एक्सपीरियंस को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए, और जब वो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा देन इट इज योर ट्रूथ, टिल देन इट्स अ बिलीफ, टिल देन इट्स अ बिलीफ। बट बिकॉज समबडी एल्स इज सेइंग कि उनको एक्सपीरियंस हुआ है, और फिर इतने लोगों ने कहा और दुनिया में इतने लोगों ने किया है, ये उनको एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम किसी का बिलीफ लेते हैं, हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस दिन वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, उसके बाद वो हमारा ट्रुथ बन जाता है। अब उसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ, लोग बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बोलेंगे मेरा एक्सपीरियंस है ये, दिस इज माइन। अनुभव से बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट है? आपको कोई बोले आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, आप सुनते रहेंगे हाँ आम मीठा है, मीठा है, अच्छा इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है, लेकिन जब तक आपने नहीं खाया, जब तक आपने नहीं खाया आपको पता चलेगा कितना मीठा है वो? नहीं। एक बार आपने खाया फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आम मीठा का मीनिंग क्या होता है। इसीलिए जितना कुछ भी हम यहां से ग्रहण कर रहे हैं, इट शुड नॉट रिमेन एट द लेवल ऑफ नॉलेज, इट हैज टू गेट कन्वर्टेड टू पावर, एंड पावर कम्स ओनली व्हेन इट बिकम्स माय एक्सपीरियंस। तो चलो अपने संकल्प लिखते हैं। ये तो सब हमने सबके संकल्प सुने, तो संकल्प से सिद्धि का एक मेथड है। भाषा क्या है? आपको याद है कुछ साल पहले एक मूवी में हमने गाना सुना था, ऑल इज वेल। किस किसने सुना था वो गाना? अभी देखो वो बाकी क्या गाना है वो तो याद नहीं रहता है, लेकिन ऑल इज वेल अभी तक भूला नहीं है, राइट है बात? हाँ, तो उस गाने का क्या लाइन था कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बोलो ऑल इज वेल। ये संकल्प से सिद्धि सिखा रहा था कि लाइफ में कुछ भी हो आप प्रॉब्लम का चिंतन नहीं करो, आप कहो ऑल इज वेल, और बोलते बोलते ऑल इज वेल हो जाएगा। तो तीन हमने कल स्पिरिचुअल लॉज लिखे थे। कौन से तीन लॉज थे? संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है, और संस्कार से संसार बनता है। तो सृष्टि और संसार हमारा कौन सा है? यहां उंगली रखो, मैं आत्मा यहां रहती हूं, तो मेरा सबसे पहला संसार कौन सा है? मैं। अब ये मैं नहीं है, ये मैं है। मेरे संकल्प से मेरी सृष्टि बनती है, माई वर्ल्ड गेट्स क्रिएटेड थ्रू माई थॉट्स। सो वट इज द फर्स्ट वर्ल्ड दैट विल गेट इम्पैक्टेड विद माई थॉट्स? ये हूं मैं। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा है जिस पर मेरे संकल्पों का असर पड़ रहा है? मेरी बॉडी। ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी सृष्टि है। तो यहां से हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले एक फीलिंग बनती है। ये एक साइकिल है, आप लिख लीजिए एक बार। थॉट विल क्रिएट अ फीलिंग। अब हम जनरली अपने आप को फीलिंग लेवल पे देखते हैं। हाउ एम आई फीलिंग टुडे? हम एक दूसरे को पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे। हम ये नहीं पूछते व्हाट आर यू थिंकिंग टुडे। हम कहते हैं व्हाट आर यू फीलिंग टुडे। तो हम कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, और आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। हम फीलिंग के लेवल पर देखते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने आप को फीलिंग के लेवल पर चेंज नहीं कर पाएंगे। फीलिंग के पीछे थॉट कौन सी थी? तो अगर किसी दिन हम लो फील कर रहे हैं, नॉट हैप्पी फील कर रहे हैं, और कोई बोले अच्छा फील करो, हैप्पी हो जाओ, नहीं हो सकता। एक सेकेंड रुको, चेक करो कौन सी थॉट चल रही थी बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो थॉट से फीलिंग बनती है, रिपीटेड फीलिंग्स क्रिएटेड हमारा एटीट्यूड बन जाती है। जैसे कहते हैं ना, ये बहुत पेसिमिस्टिक है, हर चीज में ये नेगेटिव सोचता है, मतलब उसका एटीट्यूड बन गया है पेसिमिस्टिक होने का। कैसे बन गया वो एटीट्यूड? बहुत बार सेम टाइप की फीलिंग क्रिएट करके। कैसे बना? बहुत बार सेम टाइप की थॉट क्रिएट करके। तो फर्स्ट थिंग इज थॉट, सेकेंड थिंग इज फीलिंग। रिपीटेड फीलिंग्स will become my attitude. Attitude will come into action. ये हमारा process plant है जो अंदर चलता है पूरा। जो मेरा attitude है वही मेरे action में आएगा। Repeated action बन जाएगी मेरी habit. All my habits put together personality. All my habits put together, मेरा व्यक्तित्व बनाती है, मेरी personality बनाती है. और जैसी मेरी personality होगी, वैसी मेरी destiny होगी. आप सब एक ही medical college में जाएंगे, आप सब एक ही पढ़ाई पढ़ेंगे, आप सबका कॉलेज भी सेम होगा, टीचर भी सेम होगा, पढ़ाई भी सेम होगी. और सपोज हम अज्यूम करें आप पढ़ने में भी एक जैसे ही होंगे, हाइपोथेटिकली आपके नंबर भी एक जैसे आ जाएं सबके, फिर भी डेस्टिनी प्रैक्टिस में अलग अलग होगी. यस और नो? यस और नो? तो कौन सी फैक्टर उस पर काम कर रहा है? हर एक की पर्सनैलिटी अलग है. डेस्टिनी हमारी पर्सनैलिटी से बनती है. सो थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, ऑल माई हैबिट्स, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी विल क्रिएट डेस्टिनी. तो थॉट से हम डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं. एक गलत थॉट मेरी डेस्टिनी चेंज कर सकती है, एक सही थॉट मेरा भाग्य बदल सकती है, एक सही थॉट मेरे रिश्ते को स्मूथ बना सकती है, एक गलत थॉट मेरे रिश्ते में गांठ ला सकती है. सो एवरी थॉट इज इंपॉर्टेंट. अब अगर इफ एवरी थॉट इज इंपॉर्टेंट, तो थॉट्स का सोर्स क्या है? तीन चीजें, रॉ मटेरियल. क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हम बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग हुई क्यों इतनी? व्हाई कांट प्योर पावरफुल थिंकिंग बी नेचुरल वे ऑफ लिविंग? क्योंकि थ्री सोर्सेज हैं थॉट्स के. वन इज माई बिलीफ सिस्टम, मेरी मान्यता क्या है किसी भी बारे में. जब तक मैं सोचती हूँ मैं शरीर हूँ, वो मेरा एक बिलीफ सिस्टम है. मैं एक रोल हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम है. कल से हमने प्रैक्टिस किया मैं सोल हूँ, वो एक बिलीफ सिस्टम है. मान्यता. तो हमारी बहुत सारी थॉट्स हमारी बिलीफ सिस्टम के थ्रू चलती हैं. अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है गुस्से के बिना काम नहीं होता, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, तो मुझे गुस्से वाली थॉट क्रिएट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. कल हमने एक बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया है कि गुस्से से काम नहीं, गुस्से से काम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है. बाहर काम हो गया लेकिन अंदर की शक्ति कितनी घट गई. तो अब हम एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर जाएंगे यहां से मंडे को कि शांति और प्यार से सारे काम हो जाते हैं. हो जाएंगे? हो जाएंगे? ओहो अभी नहीं बोलेंगे तो मंडे को कैसे करेंगे? हो जाएंगे? आप कम से कम ये बोलो हम करके देखेंगे. इतना तो लिख सकते हैं ना कि हम करके देखेंगे. एक बार एक नर्सेस कॉन्फ्रेंस थी, नर्सेस डे था वो, तो उनसे उन्होंने टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रखा. तो उनको पूछा क्या कॉज है आपके स्ट्रेस का, तो आपको पता है उन्होंने किसको याद किया? वो आपको पता है ये बात? ओ मैंने नहीं सोचा था लेकिन वो रीजन होगा. मुझे लगा होगा उनका वर्क लाइफ और टाइमिंग और रात रात को जागना, बैलेंस नहीं है, इतना सब कुछ होता है. आई नेवर थॉट कि ये आंसर होने वाला है. इट वॉज अ वेरी यूनानिमस आंसर. डॉक्टर गुस्सा करते हैं. मैं कहा ये क्या बात हुई? डॉक्टर क्या? नहीं डॉक्टर गुस्सा करते हैं. तो मैं कहा पेशेंट भी तो गुस्सा करते हैं. पेशेंट तो कितना इरेटिक बिहेव कर सकता है. पेशेंट तो कभी कभी सिस्टर्स पर कैसे चिल्लाते भी हैं. तो वो इतनी स्वीटली एक सिस्टर बोली उनका बुरा नहीं लगता, वो बीमार है. मैं कहा वो भी बात राइट है, बीमार का क्यों बुरा लगना चाहिए. तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली उस टाइम आंसर निकला, वो जो गुस्सा करते हैं वो भी बीमार है. तो बोली वो बीमार क्यों है? मैंने कहा इमोशनल डिजीज. कल हमने देखा था लेफ्ट हैंड पे सारा कुछ जो है वो क्या है? वो इमोशनल डिसईज है. मैं आत्मा अपनी ईज की पोजीशन से शिफ्ट हो गई तो वो डिस ईज है. तो एनीवेज वो प्रोग्राम फिनिश हो गया, सब हो गया. नेक्स्ट डे पे वो एक सिस्टर ने जिसने कोऑर्डिनेट किया था वो प्रोग्राम, तो उसने फोन किया. शी सेड ये तो बहुत आसान है. आज वो फिर आए, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन उनको सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए होता है. कुछ भी थोड़ा सा हो गया तो वो सर्जरी से पहले गुस्सा कर देते हैं. कहती आज मैंने एक थॉट क्रिएट की, वो बीमार है. आप क्या सोचते हो क्या हुआ होगा वो थॉट क्रिएट करने के बाद? मेरे को बहुत लर्निंग हुआ उसका वो एक्सपीरियंस सुनने के बाद. कहते मैंने सोचा वो बीमार है, मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहती मुझे बुरा नहीं लगा फिर उनकी डांट का। मैं कहा वो भी ठीक है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, कहती मैंने ये सोचा मैं इनके लिए क्या कर सकती हूं। जैसे ही हम विक्टिम मोड खेलना बंद करते हैं हम हीलर बन जाते हैं। दिस इज कंपैशन इन एक्शन, दिस इज एम्पथी इन एक्शन। कल शाम के सेशन में हमने क्या देखा था, सामने वाला कोई भी हो, चाहे आपका बच्चा है जो लो है, चाहे आपका कलीग है जो आपको डोमिनेट कर रहा है, वो बीमार है, जो भी लेफ्ट हैंड से थोड़ी देर के लिए भी ऑपरेट कर रहे हैं वो उतनी देर इमोशनली इन पेन है। उनके पेन का विक्टिम बनकर पेन में नहीं जाना है, ये एक चीज यहां से फिट करके वापस जानी है। जो भी लेफ्ट हैंड से ऑपरेट कर रहा है, नोबडी इज बैड पीपल, नो वन इज रॉन्ग पीपल, इट इज जस्ट दैट अपने संस्कारों के हम वश हैं, जो संस्कार हमारी शक्ति को क्या कर रहे हैं, नीचे लेकर जा रहे हैं। तो कोई ईगो है, एंगर है, पेन है, स्ट्रेस है, डोमिनेशन है, जेलेसी है, मैनिपुलेशन है, इनसे वो दर्द में है। दर्द वाले के सामने विक्टिम नहीं बनना है, दर्द वाले के सामने क्या बनना है, अब हाथ को ऐसे करें, एक बार देखें जब हम विक्टिम बनते हैं तो क्या होता है। मतलब जब हम कहें विक्टिम कैसे बनते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, दिस इज विक्टिम। द मिनट आई से उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, आई टेक द एनर्जी लाइक दिस, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मतलब अब जो उनकी एनर्जी होगी, कल देखा जो उनकी एनर्जी होगी वो किसकी एनर्जी बन जाएगी, वो मेरी बनेगी, और मेरी एनर्जी उन पर असर करेगी क्योंकि आई एम होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय पेन, यू आर द कॉज ऑफ माय पेन, एंड फिर वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती जाएगी रिश्ते में। और आज से ऐसे नहीं, हीलर कैसे होगा? आपके लिए हीलर बनना बहुत आसान है क्योंकि हीलिंग आपका इनेट संस्कार है, सिर्फ आपको फिजिकल लेवल के साथ साथ अभी इमोशनल लेवल की दर्द को समझकर उसको हील करना है। तो आज से ऐसे नहीं, कैसे रहेगा हाथ हमेशा? जिनका हाथ ऐसे रहता है उनको क्या कहा जाता है? दाता। और जो दाता होता है उसका हेलो कौन से कलर का होता है? व्हाइट। एंड व्हाइट मतलब कोई दाग नहीं। ये ऐसे ऐसे करने से बहुत दाग लिए सारा दिन, अपना दर्द बहुत थोड़ा है, बाकी तो हम बाकियों का ही लेते जा रहे हैं सारा दिन। सो ऐसे नहीं करना, इमीडिएटली ये दर्द में है तो हमें फिर सिस्टर्स को गुस्सा तो नहीं करना चाहिए ना, फिर इसका मतलब मैंने सोचा आप डिसीजन ले लेंगे इतनी देर में उसकी कहानी सुनने के बाद। आप हर पेशेंट को राउंड पे जाते हुए 5-7 मिनट मिलते होंगे, राइट? लेकिन वो नर्स पूरा दिन मिल रहे हैं उनको। अगर आप अपने नर्स को कुछ ऐसा कहते हैं जिससे वो दर्द में जाती है तो आपने अपने पेशेंट को दिन भर का दर्द दे दिया। वो काम उतने ही अच्छे से करेंगे, उसमें एक भी गलती नहीं होगी, लेकिन इनके ऑरा में क्या आ जाएगा? पेन, हर्ट, ह्यूमिलिएशन, और उससे वो पेशेंट की हीलिंग क्या हो जाएगी? स्लो डाउन। तो क्या हम कर सकते हैं कि यहां से जाने के बाद हम उनसे, गलतियां कर सकता है कोई, राय भी देनी है, स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमिलिएट नहीं। स्ट्रिक्ट इज डिफरेंट एंड एंगर इज डिफरेंट। एंगर डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, स्ट्रिक्ट रिस्पेक्टफुल होता है। स्ट्रिक्ट में आप गलती पर बात कर रहे हैं, एंगर में आप व्यक्ति को गलत बोलते हैं, इट गेट्स वेरी पर्सनल। स्ट्रिक्ट में आप बोलते हैं आप बहुत अच्छे हैं लेकिन ये वाली चीज गलत हो गई आज। एंगर में आप कहते हैं बार बार आप यही गलती करते हो, कितना समझाओ आपको, वी आर हिटिंग एट द पर्सन, बट दैट पर्सन इज अ हीलर इन योर हॉस्पिटल। हीलर तो सिर्फ आप नहीं है ना, सिर्फ आप हीलर नहीं है। तो ये लक्ष्य रखना, अपने यूनिट, अपने डिपार्टमेंट के किसी भी हीलर की एनर्जी को डिप्लीट करने का कर्म नहीं करना, क्योंकि उसका असर किस पर पड़ने वाला है? उनके ऊपर पड़े। दूसरी चीज, अगर आपने किसी को डांटा, आप तो भूल जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा गलती की थी, मेरा तो इंटेंशन राइट था, आप भूल के चले जाएंगे, लेकिन जब तक वो हील नहीं होंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो किसको अपने दर्द का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? आपको। तो आपके पास क्या आता रहेगा? पेन। आप 30 सेकंड्स गुस्सा कीजिए, अगले 8 घंटे आपके पास दर्द आने वाला है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और अगर सामने वाले ने गलती की और उसको लग रहा है आज बहुत जोर से डांट पड़ने वाली है, और उस टाइम आपने उसको स्माइल किया और कहा कोई बात नहीं, ऐसी गलती मैंने भी की थी शुरू में, सब बढ़िया हो जाएगा, 8 घंटे दुआएं मिलने वाली है उसके बाद। क्या चाहिए, क्या चाहिए? दिस इज वेरी स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स है। हमें पता नहीं चलता एट द एंड ऑफ द डे क्यों भारी लग रहा है, क्यों लाइट नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं सुबह सुबह एक इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो भैया आपकी गाड़ी चला के आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेट आ गए, बस ऐसे ही डांट दिया उसको। अब गलत है, लेट आए तो डांट तो पड़ेगी ना, उसको डांट दिया, अंदर चले गए, वो पूरा दिन बाहर खड़ा है बाहर आपके हॉस्पिटल में, वो किसको याद करेगा, किसको याद करेगा? तो इसलिए एंगर को हमें क्या करना है, लक्ष्य रखेंगे। आधा तो सिर्फ लक्ष्य रखने से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बना हुआ है, गुस्से के बिना काम नहीं होता, गलत करते हैं तो गुस्सा तो करना ही। दैट बिलीफ सिस्टम इज क्रिएटिंग द एंगर। जस्ट गो बैक विद द न्यू बिलीफ सिस्टम। पीस इज पावर, पीस इज पावर। शांति से किसी के साथ बात करो, शक्ति क्रिएट हो जाती है उस इंटरेक्शन के अंदर। और एक हीलिंग स्पेस में शक्ति का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है। तो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। अपने हॉस्पिटल को नो एंगर जोन बना दीजिए, कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया है, आप करके देखिए। सुंदर सुंदर पोस्टर बनाइए, सबसे पहले अपने ओपीडी में लगाइए, लगाते ही आदत वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पीछे पोस्टर लगा होगा। यस, उससे क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट यू हुज डूइंग इट, लेकिन आप भी नो एंगर जोन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सारी टीम प्रैक्टिस करेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पेशेंट्स प्रैक्टिस करेंगे नो एंगर जोन। दे हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एक ऐसा समय आया है कि लोग, क्योंकि इमोशनली थोड़ा सा डिप्लीटेड है, रिएक्टिव ज्यादा होते जा रहे हैं, और फिर वो आपकी यूनिट पर आपका स्टाफ जो बाहर खड़ा है उनके साथ भी बहुत रिएक्ट करके बात करते हैं। एंड दिस शुड बी स्टॉप्ड, ये रुकने की जरूरत है। स्पेशली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां हमको लगता है हम पैसे दे रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, यहां खड़े होकर चिल्ला सकते हैं हम इधर, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आप आए, पहले नहीं था ये, कोविड के बाद हुआ है, विदेश में तो बहुत जगह पर होता है, हर जगह जहां सिक्योरिटी चेक क्रॉस करना है वहां पे बोर्ड लगा होता है, इफ एनीबडी मिसबिहेव्स विद देम, समथिंग लाइक दैट इज नीडेड इन अ हेल्थ केयर सेटअप। क्योंकि वो सारा दिन हीलिंग कर रहे हैं, कोई भी आके उनको कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। इस तरह से बोलना है, लेकिन बोलने का तरीका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये कल्चर हमें अपने हॉस्पिटल में क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सोल्स जितना डिप्लीट होंगे उतना रिएक्टिव होते जाएंगे, और वो आपके सिस्टर पर, आपके जहां स्टाफ खड़ा, आपके रिसेप्शन, उस पर ऐसे चिल्ला के बात करेंगे जैसे सर्विस इंडस्ट्री में चिल्ला के बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ समय पहले मैं एक फ्लाइट पे थी, आपको पता है एयर होस्टेस पे भी लोग कैसे चिल्ला के बात करते हैं। वी थिंक वी आर अलाउड टू शाउट लाइक दैट एट देम। तो एक लेडी बहुत जोर जोर से शाउट कर रहे थे उसके पास, तो वो एयर होस्टेस बहुत रिस्पेक्टफुल बट बहुत डिग्निफाइड, सो शी लुक्ड एट हर एंड शी सेड, मैम आप जब आराम से बात करेंगे ना तब हम बात करेंगे। वो बोला उसने तो वो लेडी तो और जोर से शोर मचाने, मतलब ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। वो एयर होस्टेस ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज की, वो कहती है मैम मैं वापस जा रही हूं उधर, जब आपको अच्छे से बात करनी होगी घंटी बजा देना, मैं पहुंच जाऊंगी। एंड शी वॉक्ड अवे। जब तक आप लोगों को एक्सप्लॉइट करने देंगे, लोग एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, करते जाएंगे। टाइम हैज कम, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर स्टाफ, क्योंकि कोई भी जब उनको कुछ बोल के चला जाता है बहुत टाइम लगता है उस माइंड को वापस क्या करने के लिए, ठीक होने के लिए, और उनकी वो सारी वाइब्रेशंस उस हॉस्पिटल की एनर्जी और उन सबका जिनका इलाज हो रहा है वहां पहुंच रही है। बट इट हैज टू स्टार्ट फर्स्ट विद सेल्फ। तो कौन कौन आज प्रतिज्ञा करता है कि सिस्टर को तो मैं कभी नहीं डांटूंगी, अच्छे से उठा लो अच्छे से। कितनी दुआएं मिलती हैं सारा दिन, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जब इतना डिसीजन ले लेंगे ना, तो 10 में से सात बार तो नहीं होने वाला, एक दो बार हो भी गया तो उनको बुरा नहीं लगेगा, वो कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे अच्छे के लिए गुस्सा करते हैं, ऐसे वाली एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन नो एंगर जोन बोर्ड जरूर बनाना चाहिए और पेशेंट्स को दिखा देना चाहिए ये हॉस्पिटल ऐसा चलता है, इधर गुस्सा करना अलाउड नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हीलिंग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ थॉट्स क्या था? बिलीफ सिस्टम, स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, कंपैरिजन इज नॉर्मल, ये सब बिलीफ सिस्टम्स हैं। गुस्से करे बिना काम नहीं चलता, बिलीफ सिस्टम है। राजयोग मतलब सबसे पहले बिलीफ सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, और सबसे पहला बिलीफ सिस्टम जो चेंज किया, आई एम नॉट अ बॉडी, नॉट अ रोल, आई एम अ सोल यूजिंग दिस बॉडी टू प्ले द रोल, उसी से सारा कुछ चेंज होने लगती है, थॉट्स चेंज होती है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ थॉट्स बिलीफ सिस्टम, सेकेंड सोर्स ऑफ थॉट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो मेरी थॉट बनने लगता है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, उस दिन भी उन्होंने ऐसे ही किया था, लोग बार बार ऐसे ही करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे थॉट्स का सोर्स बनता है, और इसीलिए आज से एक नियम बनाए, रोज रात को सोने से पहले दिन को देखते हुए कुछ एक्सपीरियंसेस जो बहुत सुंदर नहीं थे उनको रात को सोने से पहले साफ कर दीजिए, ताकि वो आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। रात को सोने से पहले क्षमा करना, रात को सोने से पहले क्षमा मांगना, दिस शुड बी पार्ट ऑफ डेली लाइफस्टाइल, ताकि उस दिन ही खत्म हो जाए कर्म। जब हम सोते हैं वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। किस किस को पुरानी बातें याद रहती हैं? याद रहती हैं, इसलिए याद रहती हैं क्योंकि उस दिन सो गए थे उस बात के साथ। आपको याद है मम्मी पापा पहले सिखाते थे, अगर झगड़ा हुआ है सोने से पहले सुलझा कर सोना है, विच मीन्स डोंट टेक अ फाइट टू बेड। वाई? इफ आई टेक इट टू बेड इट्स गोइंग इन टू माई सबकॉन्शियस, तब तक वो कॉन्शियस लेयर पे है। आप सुबह सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, बेड पे बैठकर चाय पी रहे हैं, चाय गिर गई थोड़ी सी, क्या करेंगे इमिजिएटली? बेड पे चाय गिरी, क्या करेंगे इमिजिएटली? वॉश करेंगे, वॉश करने से पहले कुछ करेंगे। विजुअलाइज करो, बेड पे बैठे चाय पी रहे थे, चाय गिर गई, क्या करेंगे? सबसे पहले आप बेडशीट को ऐसा करेंगे कि मैट्रिस में नहीं जाना चाहिए दाग, वो बेडशीट कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड है, वो मैट्रिस सबकॉन्शियस है। एक बार सबकॉन्शियस में चला गया वो दाग को निकालना थोड़ा मेहनत वाला काम है, जब तक वो चद्दर पे है वो धुल जाएगा। तो दिन दिन के चद्दर पे जो दाग होंगे उसको रात को सोने से पहले उसको धो देना। अगर अंदर चला गया नींद में तो फिर 10 साल बाद भी याद होगा, उस दिन पता है कैसे वो उधर खड़े थे, वो उधर खड़े थे उस कोने में, नीले रंग की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था पता नहीं, शायद परांठा खाया होगा, 10 साल पहले का याद है, बिकॉज इट इज गॉन इन टू द सबकॉन्शियस। उधर से उसको निकालने में मेहनत होती है, इसलिए रोज रात को इसको 2 मिनट लगना है, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, उससे कम। मेडिटेशन इन द मॉर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इन द नाइट इज कंपल्सरी। जैसे आप रात को आए हॉस्पिटल से, एक शावर जरूर लेना चाहिए, मैंडेटरी। शावर लेने से क्या हो जाएगा? शावर लेने आपको सिर्फ 30 सेकेंड शावर के नीचे खड़े होकर आना है। अभी अभी सुना वाटर अब्सॉर्ब्स, किस किस ने, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, शावर के बाद बहुत फ्रेश फील होता है। वो फ्रेश फील होना मतलब सबकी जो वाइब्रेशन अटकी थी ना हमारे एनर्जी फील्ड के अंदर, जैसे ही वो पानी जाता है उसके ऊपर वो वाइब्रेशन सारी धुल जाती है। तो लोगों की वाइब्रेशन नींद में नहीं लेके जाने अपने साथ, हॉस्पिटल की वाइब्रेशन नींद में नहीं लेके जानी अपने साथ। 30 सेकेंड उसके नीचे खड़े हो जाओ, वो सारा धुल जाएगा। तो एक वो शावर हो गया, और फिर 2 मिनट इधर बैठ जाओ और इधर भी शावर कर लो। आज किसी से कुछ बात हुई, किसी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की, किसी से मैंने ठीक से बात नहीं की, किसी ने ये कर दिया, रात को सोने से पहले उनको क्षमा और उनसे क्षमा मांगनी, बाकी सबको शुक्रिया, क्लीन। उसी दिन सुबह रात को सोने से पहले प्लेट क्लीन, लेकिन जो बातें सारा दिन में हुई वो रात को सोचते सोचते अगर सो गए, देन इट्स गोइंग डीप इन टू द सबकॉन्शियस, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लगता है और फिर उसके थ्रू अगले दिन की थॉट चलेगी। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, सारा एक्सपेरिमेंट वाइब्रेशन लेवल पर हो रहा है। अगर आज आपकी किसी से बात हो गई, आपको लगता है पता नहीं अब कल वो ठीक से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, आप रात को सोने से पहले उस आत्मा को विजुअलाइज करो, चेहरा नहीं, उस आत्मा को लेकर आओ। मैं आत्मा, अभी हम देखेंगे परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना है, वो लेके शक्ति उस आत्मा को भेजो और उसको बोलो पास्ट इज पास्ट ओवर, टुमारो वी हैव अ नाइस टाइम टुगेदर। इतना बोलो और सो जाओ, कल सुबह आप उनका रिएक्शन देखना जब आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में। हमें लगता है कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग एंड राइटिंग, सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन यहां से हो रहा है। यहां से आप रिश्तों में गांठे बना सकते हैं, यहां से आप रिश्तों से गांठे खत्म कर सकते हैं। वी हैव टू यूज दैट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ एक सेकेंड रुक कर उनको सामने लाओ, जो आप उनको कहना चाहते हो कह दो, सो जाओ, कल सुबह देखना उन तक मैसेज पहुंच गया होगा। बच्चों को कुछ कहना चाहते हो, नहीं सुन रहे, कहना बंद कर दो, लिखना भी बंद कर दो, सिर्फ यहां से भेजना शुरू कर दो, बदल जाएंगे। वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो ईगो के बैरियर को क्रॉस करके जाती है। जब हम इधर से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी ईगो और अटैचमेंट भी बीच में होती है, उनकी ईगो और अटैचमेंट भी बीच में होती है। हम बोल रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं रहे होते हैं। लेकिन जब आप वाइब्रेशनली मैसेज भेजते हैं, वो डायरेक्टली, इट इज अ सोल टू सोल कम्युनिकेशन, वो बिन ईगो और बैरियर सारे क्रॉस करके जाता है। इट इज लाइक दैट आईवी, वो सीधा जाता है अंदर, दवाई वगैरह टाइम लगती है, सीधा आधे घंटे में ताकत आ जाती है। तो पास्ट बिलीफ सिस्टम, पहला बिलीफ सिस्टम, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड तीसरा सोर्स ऑफ थॉट्स इंफॉर्मेशन। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है। सारी जो प्रॉब्लम समाज में बहुत सारी आई हुई है मन को रिलेटेड पिछले 10-15 साल में, उसका एक ही मुख्य कारण है वो छोटा सा फोन जो हमारे हाथ में है। इट इज द फंडामेंटल ओनली रीजन, देर इज नो अदर रीजन फॉर सो मच स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड पैनिक इन द वर्ल्ड। कॉन्टेंट कंजम्पशन बढ़ गई, घंटों घंटों का कॉन्टेंट कंज्यूम हो रहा है। स्ट्रेस क्यों नहीं था? क्योंकि कॉन्टेंट के नाम पे क्या था हमारे पास, क्या कॉन्टेंट कंजम्पशन थी हमारी? हमारे जीवन काल में तो पहला टीवी आया था, राइट है? किस किसने पहला टीवी देखा? सो वी आर द वंस हु हैव विटनेस्ड दिस हिस्ट्री चेंज। ये हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे टाइम की क्रिएट हुई चेंज है। तो हमारे टाइम पे व्हाट वाज द कंटेंट? एक न्यूज़पेपर जो रोज घर आता था, स्कूल की लाइब्रेरी की किताब और पेरेंट्स और टीचर की एडवाइस, दिस वाज आवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और स्ट्रेस वर्ड फिजिक्स में था सिर्फ तब। धीरे धीरे पहला टीवी आया, पहला फोन आया, हम दूसरों के घर जाते थे फोन पे बात करने, हम दूसरों के घर जाते थे टीवी देखने। हफ्ते में एक एपिसोड आता था और वो भी बहुत सात्विक सात्विक आता था, सारे मिलकर प्यार से देखते थे। लेकिन वो किसी का बिजनेस था ना, उसने देखा ये तो सारे बैठ जाते अपना काम वाम छोड़ के। तो फिर हफ्ते के एक दिन से हफ्ते के 5 दिन हुआ, हम 5 दिन देखने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अरे लोग, सब लोग फ्री नहीं होते, उसे रिकॉर्डिंग का सिस्टम आया, रिकॉर्ड करो एपिसोड को बाद में देखो, राइट? फिर क्या कर दिया उन्होंने, 24/7 एपिसोड चल रहे हैं, देखते जाओ। और फिर उन्होंने कहा बट फिर भी लोग टीवी के सामने कितनी देर बैठ सकेंगे, सबको फोन पे डाल दो। आप ग्राफ बनाइए, कॉन्टेंट वर्सेज इमोशनल मेंटल फिजिकल एंड रिलेशनशिप हेल्थ, एंड आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ मिलेगा। इसलिए अपनी हर प्रिस्क्रिप्शन में जहां आप डाइट लिखते हैं, अगर आपने इमोशनल डाइट साथ में नहीं लिखी, देन योर प्रिस्क्रिप्शन इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो इमोशनल डाइट इज व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। बच्चों में क्यों एंग्जाइटी बढ़ रही है? रात को सोने से पहले क्राइम शो देखते हैं और फिर सो जाते हैं, वो गद्दे में चला जाता है क्राइम शो, फिर सबकॉन्शियस में जाता है। पूरा दिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, रात को बैठ के देखते हैं ऐसी चीजें, इट्स माय टाइम। आप में से तो नहीं कोई ऐसा करता कुछ, इट्स माय टाइम। हीलर मतलब आपकी वाइब्रेशन प्योर होनी चाहिए, इसलिए आपको कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करना चाहिए जो आपके ऑरा में जाके अगले दिन आपके पेशेंट को मिलने वाली है वो एनर्जी। आप डॉक्टर नहीं, आप हीलर हैं। डॉक्टर मतलब जिसको इलाज पता है और वो लिख देता है और इलाज हो जाएगा। हीलर मतलब जिसकी वाइब्रेशंस इलाज कर। क्या हम ध्यान रख सकते हैं अपनी कंटेंट कंजम्पशन का? एनीबडी हियर एडिक्टेड टू द फोन? एनीवन एडिक्टेड टू द फोन? ऑल ऑफ अस कैसे बोल सकते हैं? ऑल ऑफ अस वाला बिलीफ सिस्टम खत्म करके जाएंगे यहां से। ओके, सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग नो फोन। बहुत सिंपल स्टेप्स है। 2025 में अगर हमने ये वाली डी एडिक्शन नहीं की तो 26 डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अभी नई चीजें आने वाली हैं, नई चीजें आने वाली हैं। उससे पहले इस पर मास्टरी कर लें। सुबह सुबह अगर फोन उठा रहे हैं तो सिर्फ मेडिटेशन का म्यूजिक लगाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे नहीं दो मिनट देख लेते हैं फिर बैठेंगे। दो मिनट में देख लिया तो यहां का ब्लॉटिंग पेपर ने सारी दुनिया की बातों को सुबह सुबह ऑब्जॉर्व कर लिया। अब उसके बाद मेडिटेशन लगेगा भी नहीं अगर बैठेंगे करने के लिए। वन आवर कीप दिस फॉर माई सेल्फ। अगर कुछ अर्जेंट होगा लोग फोन करेंगे आपको, और अगर देखना है तो हॉस्पिटल से क्या मैसेज आया बस उतना, बाकी न्यूज में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, मेरे सोशल मीडिया कल वीडियो डाला था उसको कितने लोगों ने देखा, दैट इज नॉट फॉर द मॉर्निंग टाइम। दो टाइम सबकॉन्शियस एक्टिव है, फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, लास्ट आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप। ये दो टाइम पे कुछ नहीं डालना है ऐसा। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप टू डी एडिक्शन। विड्रॉल सिम्टम हो गए, मन करेगा पांच मिनट देख लेते हैं, नहीं देखना है, चार पांच दिन लगेंगे, एडिक्शन इज ओवर। एडिक्शन का पैटर्न ब्रेन के ऊपर दिखाई देता है। दिस इज एन एडिक्टिव पर्सनैलिटी। एन एडिक्टिव मतलब गुलाम। गुलाम फिर मन का मालिक नहीं बन सकता, चाहे वो किसी भी चीज का अडिक्ट हो। एनी एडिक्शन इज गोइंग टू क्रिएट अ पर्सनैलिटी, एनी एडिक्शन। इवन अगर आप बोलेंगे मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, दैट इज एन एडिक्शन। एन एडिक्शन हमारी पर्सनालिटी पर असर करती है। गुलाम, मालिक बनना है। हम में से कोई चाय का गुलाम? चाय पिए लेकिन मालिक बनकर पीना है, गुलाम बनकर नहीं। क्योंकि चाय तो चाय है, लेकिन गुलाम या मालिक पर्सनालिटी बन जाएगा। थोड़े दिन के लिए छोड़ के देखते हैं, फिर मालिक बन जाएंगे, फिर मालिक बनकर पिएंगे। इसके बिना मेरा नहीं चलता है, ये लाइन हमारे जीवन में किसी चीज के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज मेकिंग अस अ विक्टिम, गुलाम। जितनी गुलामी का संस्कार होगा उतनी डिपेंडेंट होती जाएगी ना सोल किसी ना किसी चीज के ऊपर, फिर वो परिस्थितियों में मालिक कैसे बनेंगे? इसके बिना मेरा नहीं चलता है, इसके बिना मेरा सर दर्द होता है। आपको तो सारी साइकोलॉजी पता है उसके पीछे, फटाफट से ठीक करो अपने आप को। नो डिप्लेटर। तो फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग, लास्ट आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप। मील टाइम, खाना खाने के टाइम कोई स्क्रीन ऑन घर में नहीं हो सकता है, दैट हैज टू बी अ रूल। और अगर आप अपने पेशेंट्स को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, ये आप अपनी हर प्रिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। सिर्फ बेस्ट डाइट लिखने से नहीं होगा, बेस्ट तरीके से खाना बनना कैसे चाहिए और बेस्ट तरीके से खाना खाना कैसे चाहिए, सिर्फ बेस्ट खाना खाना है उससे, दैट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। अब यहां मेरी प्लेट है, खाना है, ये अन वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है, ये पानी वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है, एंड आई एम वॉचिंग द वर्ल्ड न्यूज बाय लिटिंग। कौन से शब्द जाने वाले हैं, कौन से शब्द जाने वाले हैं? फिर न्यूज खत्म हो गई तो मेरे को सीरियल देखना है, कौन से शब्द जाने वाले हैं? और वो खत्म हो गया तो मुझे सोशल मीडिया स्क्रोल से शब्द जाने वाले हैं। 10 मिनट्स ईटिंग शुड बी लाइक अ रिचुअल, लाइक अ रिचुअल। इट हैज टू बी डिवाइन। क्योंकि जैसा पानी वैसी वाणी, दिस इज हीलिंग। आज आपने सुना ना पानी से, आप करके देखिए, ये मिरेकल रिजल्ट्स है। मिरेकल, अपने अपने मिरेकल क्रिएट करने हैं सपने। क्यों कहा जाता है आप कौन से शहर का पानी पीते हैं? कहावत सुनिए, आप कौन से शहर का पानी पीते हैं, आप किसके घर का नमक खाते हैं। एक बड़ा एक भाई था दिल्ली में, पहले वो पहाड़ों से आया था। तो जब वो आया था बहुत भोला भोला भोला, बहुत इनोसेंट, थोड़े साल बाद थोड़ा चेंज हो गया। तो सामने से कोई कहता, दिल्ली का पानी पी रहा ना 5 साल से। पानी, क्योंकि पानी में शहर की वाइब्रेशन होती है। आप इस शहर में रहिए, पानी पीजिए, आप 1 घंटा दूर एक दूसरे छोटे से गांव में जाइए, वहां का पानी चेंज्ड है, क्योंकि वहां के लोगों के संस्कार पानी अब्सॉर्ब करता है। कोविड में 2 साल पानी ने दर्द डर अब्सॉर्ब कर लिया और वो पानी सबने पिया, एंड कोविड खत्म हो गया, डर नहीं खत्म हुआ। पानी, पानी इज पावर। तो अन्न इज पावर। क्यों बचपन से सिखाया गया खाना खाने से पहले रुको, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को शुक्रिया करो? क्योंकि वो शुक्रिया करने से, भगवान को याद करने से वो शक्ति चेंज हो रही है, उस खाने की वाइब्रेशन चेंज हो रही है। तो इसीलिए हो सकता है हमारे घर में खाने के टाइम नो स्क्रीन्स हो सकता है। पक्का पक्का, एकदम पक्का। एंड मेक इट अ रूल फॉर योर चिल्ड्रन, मेक इट अ रूल फॉर देम। हाँ जी, मेक इट अ रूल। बहुत सारी बातें, सिर्फ ये कंटेंट कंजम्पशन ठीक से हैंडल नहीं हो रहा, उसी के लिए। अगर किसी भी बच्चे ने अपने कंटेंट से रिस्ट्रिक्ट कर लिया ना, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी 3 महीने के अंदर। बिकॉज जैसा हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो हमारी सोच, सोच से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, एटीट्यूड से हैबिट, हैबिट से पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से डेस्टिनी। पिछले 25 ईयर्स में कॉन्टेंट से हमारी डेस्टिनी चेंज हुई है। तो कॉन्टेंट चेंज कर लें, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। इसी शाम को आके घर पे अपने फोन को एक लैंडलाइन बना दीजिए, ठीक है? हो सकता है ऐसा रख सकते हैं कॉर्नर में। याद है एक फोन था, घंटी बजती थी, हम जाते थे उठाने के लिए, बस वैसे वाला। सबके बीच बैठ के ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। रिश्ते कैसे बनेंगे, रिश्ते कैसे बनेंगे? उसको रखिए। आप डॉक्टर हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोन, बजेगा, जाइए, बात करिए, वापस रखिए। आप पहले करेंगे, आपको देख के दूसरा करेगा, और धीरे धीरे आपके बच्चे सीखेंगे और ये उनकी हीलिंग हो जाएगी। रख सकते हैं, 2 घंटा ही तो होते हैं शाम को घर, होते कितनी देर है, होते कितनी देर है हम घर? डू यू सी एवरीबडी जस्ट सिटिंग लाइक दिस एट होम? दिखता है, नहीं दिखता? बाहर बैठे हैं तो भी ऐसे बैठे हैं, इकट्ठे एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो भी ऐसे बैठे हुए हैं। और इसमें क्या हो रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहे, वो अलग बात है, लेकिन कंज्यूम करते जा रहे हैं। कितना कंज्यूम करते जा रहे हैं, अपने माइंड को ब्रेक नहीं देते कंज्यूम करने से, तो थॉट्स में प्योरिटी कैसे आएगी? तो 3 सोर्सेस क्या थे? बिलीफ सिस्टम, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन। जैसे ही हम राजयोग सीखते हैं, हम रामा कुमारी मेडिटेशन सेंटर पर जाते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन का रोज का सोर्स चेंज हो जाता है। तो सुबह सुबह हम अखबार देखने की जगह हम आधा घंटा सेंटर पे जाके परमात्मा का ज्ञान भरते हैं। इंफॉर्मेशन चेंज्ड, थॉट्स चेंज, डेस्टिनी चेंज, ओनली इंफॉर्मेशन, दैट इज पावर। तो ये साइकिल है। तो अब जब हम संकल्प से सिद्धि करेंगे, हम अपनी थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, डेस्टिनी तक चेंज आने वाला है। संकल्प से सिद्धि का फॉर्मूला क्या है? जो आप चाहते हैं कि हो, वो आपको कहना है कि वो हो चुका है। द ब्रेन cannot differentiate between the real and the imaginary. It is only going to take the instruction and process it as it is. अगर हम चिंता कर रहे हैं या वो रियल है, ब्रेन के लिए तो वही इंस्ट्रक्शन है जो ऑपरेटर से मिल चुकी है। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर कौन है? ब्रेन का ऑपरेटर कौन है? मैं आत्मा, मैं आत्मा। आपकी स्टडी ब्रेन पर आकर रुक जाती है और इसीलिए बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं। क्योंकि हमने सोल है उधर तक हम गए नहीं, हमने कहा ब्रेन ये करता है, ब्रेन ये करता है, ब्रेन कुछ भी नहीं करता है, जो आत्मा इंस्ट्रक्शन दे रही है ब्रेन उसको कर रहा है और कुछ नहीं। ब्रेन थोड़ी कुछ कर रहा है अपने आप से, ब्रेन इज द कंप्यूटर, बॉडी इज दैट रोबोट, वी आर थिंकिंग द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग द रोबोट, बट हु इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर? कंप्यूटर को प्रोसेस करने वाला कोई होता है कि नहीं? ऑपरेटर। तो मैं आत्मा वो ऑपरेटर हूं, ब्रेन वो कंप्यूटर है, मैंने जो इंस्ट्रक्शन डाली ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने उस इंस्ट्रक्शन को उस रोबोट को दिया और ये शरीर ने वैसा काम करना शुरू किया। तो हम ब्रेन पे वर्क कर रहे हैं, हमें ब्रेन के पीछे के ऑपरेटर पर वर्क करना है। तो लिखें संकल्प से सिद्धि, स्टार्ट करें। कल आपने हाथ उठाया था खुशी चाहिए, अब उसको चेंज करें, थॉट क्या बनेंगे? I am always happy. संकल्प से सिद्धि इतनी पावरफुल है कि एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे किसी को नहीं बताना, पहले अपना एक्सपेरिमेंट करना है। एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको एक्सपीरियंसेस मिलने शुरू हुए, आप अपने पेशेंट्स को चलते चलते दो लाइन बता देना, आप ऐसे सोचो, यूजिंग द पावर ऑफ माइंड इन हीलिंग टू क्रिएट मिरेकल्स। मिरेकल्स की परसेंटेज हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम मेडिसिन के साथ माइंड पावर को यूज करना शुरू करें। अगर हम सिर्फ मेडिसिन को यूज करते हैं, फिर जो हमारे पास डेटा है कि ये दवाई खाने से इतने परसेंटेज लोग ठीक होते हैं, ये करने से इतने साइड इफेक्ट होते हैं, हम उसी को रिपीट करते जाते हैं, वही इंफॉर्मेशन रिपीट बनती है और वही स्टैटिस्टिक्स बनता रहता है। स्टैटिस्टिक्स को चेंज करने की पावर किसके पास है? मिरेकल्स क्रिएट करने की पावर किसके पास है? और आपसे ज्यादा माइंड पावर कौन देखता है सारा दिन? कुछ पेशेंट होते हैं उनको सालों साल दवाई का साइड इफेक्ट नहीं पता होता, उनको साइड इफेक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन जब से हमारे पास, आपको मुश्किल होने लगे ना जब से गूगल है ना, इन्फॉर्मेशन, दैट्स वेयर इट इज इन्फॉर्मेशन। वो आपके ओपीडी के बाहर बैठे बैठे भी गूगल करते हैं, ये मेरा सिम्टम है तो मुझे क्या है, मुझे क्या हो रहा है। इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग द थॉट्स, दैट इज स्लोइंग डाउन द हीलिंग, दैट इज स्लोइंग डाउन द हीलिंग, द इन्फॉर्मेशन। तो लिखें संकल्प से सिद्धि, पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल सोल। तो पावरफुल सोल मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट, हर सिचुएशन में पावरफुल, हर सिचुएशन में स्टेबल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तब जैसे ही हम ये संकल्प को रोज रिपीट करेंगे, हमारी भाषा चेंज हो जाएगी। उसने ऐसा किया ना इसलिए बुरा लगा, नहीं, उसने ऐसा किया इसलिए गुस्सा आया, दैट लाइन विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, वो अपने आप जाएगी, हमने उस पर काम ही नहीं करना है। हमने कहना है आई एम अ पावरफुल सोल। सेकेंड, आई एम काम एंड स्टेबल इन एवरी सिचुएशन, आई एम काम एंड स्टेबल इन एवरी सिचुएशन, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं, स्थिर हूं। जरूरी है ये हीलिंग के लिए शांत और स्थिर रहना सारा दिन? तो शांत और स्थिर रहना है नहीं बोलेंगे, शांत और स्थिर हूं, बस भाषा सीखनी है, फिर हर सिचुएशन में फिट होगा। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं दुआओं से पलने वाली आत्मा हूं ना। आप पैसे ज्यादा कमाते हैं या ब्लेसिंग ज्यादा कमाते हैं? क्या लगता है आपको, आप क्या ज्यादा कमाते हैं? आप धन ज्यादा कमाते हैं या दुआएं ज्यादा कमाते हैं? आप कभी बैठ के याद करते हैं आपने कितनी दुआएं कमाई हैं? जो इतनी दुआएं कमाएगा वो स्ट्रेस वर्ड यूज ही नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी उस तरफ जा नहीं रही कि हम कितनी ब्लेसिंग्स कमाते हैं। आप एक जने को एक बार ठीक करते हैं, आप उससे धन कमाते हैं, एक ही बार धन कमाएंगे ना उससे, जब वो एक बार आएगा तो उससे एक ही बार धन कमाएंगे, लेकिन वो आपको जीवन भर नहीं भूलता। तो धन हम एक बार कमाते हैं, दुआएं हम लाइफ टाइम कमाते हैं विद एवरी पेशेंट। और फिर सिर्फ पेशेंट से थोड़ी कमाते हैं, दुआएं किस किस से मिलती हैं? उनके बच्चों से मिलती है, उनके स्पाउस से मिलती है, उनके पेरेंट्स से मिलती है, होल फैमिली रेडिएट्स ब्लेसिंग्स। सो फॉर वन पेशेंट इंटरेक्शन, वन टाइम अर्निंग, लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंटायर फैमिली। अभी आप इसका कैलकुलेशन करना जाके, कितनी दुआएं कमाते हैं, कितनी दुआएं कमाते हैं। कोई और प्रोफेशन इतनी दुआएं नहीं कमा सकता। तो अगर हर रोज आप अपने आप को याद दिलाएं कि मैं दुआओं से पलने वाली आत्मा हूं, अपने आप लाइट हो जाएंगे। हमें लगा हम पैसों से पलने वाले लोग हैं, पैसों से नहीं पलते हो, हम दुआओं से पलते हैं। जो दुआओं से पलते हैं वो उड़ते रहते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलते हैं उनको। तो रोज अपने आप को ये याद दिलाना है, ब्लेसिंग्स इज माय सस्टेनेंस। इतनी ब्लेसिंग्स कमाते हैं हम सारा दिन, और जब सारा दिन इतनी ब्लेसिंग्स कमाते हैं याद रहेंगे ना, तो किसी पेशेंट ने थोड़ा सा ऑपोजिट दिया होगा वो याद भी नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। तो मैं दुआओं से पलने वाली आत्मा हूं। नेक्स्ट लाइन ब्लैंक रखेंगे, कोई भी अपना एक संस्कार जो चेंज करना है आप पर्सनल अपना संकल्प लिखेंगे उसके लिए। सिर्फ वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, मुझे ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं, मैं ऐसे हूं। वो हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम, नॉट आई कुड बी, वुड बी, शुड बी, विश, नहीं, आई एम, आई एम। तो एक अपने संस्कार के लिए ब्लैंक रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर संस्कार है हमेशा लेट पहुंचते हैं, हर जगह मेहनत करते हैं लेकिन वो कहते पता नहीं घड़ी को आगे सेट करो तो भी हम लेट पहुंचते, पता नहीं कैसे होता है, बिकॉज वी ऑपरेट आउट ऑफ आवर संस्कार्स। संकल्प से सिद्धि सबसे पहले हम संस्कार परिवर्तन के लिए यूज करते हैं। लॉ ऑफ अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन, ये बहुत बाद के अंग्रेजी शब्द है, ये भारत की संस्कृति में हजारों साल से है कि संकल्प से सिद्धि होती है, दैट इज यूजिंग द माइंड पावर। तो अगर कोई लेट आता है वो क्या संकल्प बनाएगा अपना, आई एम पंक्चुअल, आई एम ऑन टाइम, उससे बेटर आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। देखो पावर अपनी है, जो संकल्प बनाएंगे वो होने वाला है। आप कहेंगे आई एम ऑन टाइम तो आप ऑन टाइम आएंगे, आप कहेंगे बिफोर टाइम तो आप बिफोर टाइम की कोडिंग हो जाएगी आपकी। बस कोडिंग ध्यान से करनी है, आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। किसी को दूसरों की बातें बुरी लगती हैं, हर्ट जल्दी होते हैं, क्या लिखेंगे, आई एम अनटच्ड बाय पीपल्स बिहेवियर एंड ओपिनियन, अनटच्ड, छू भी नहीं सकती, मेरे तक पहुंचती नहीं वो बात। किसी को लोगों का अप्रूवल, वैलिडेशन, अप्रिसिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, लोग कहते हैं हम अच्छे हैं तब अच्छा फील होता है, तो उसमें हम लिखेंगे I accept everyone, everyone accepts me। वैलिडेशन की जरूरत खत्म। ऐसे हाथ नहीं रखना हमने जीवन में, हम ऐसे वाले ऐसे I accept everyone, everyone accepts me। सब मुझे स्वीकार करते हैं, मैं सबको स्वीकार करती हूं। My every relationship is based on trust। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। My every relationship is based on trust। इसमें परिवार आ गया, कलीग्स आ गए, पेशेंट्स आ गए। ये बार बार अगर आप बोलेंगे पेशेंट्स ट्रस्ट नहीं करते आजकल, पेशेंट्स ट्रस्ट नहीं करते आजकल, जितनी बार बोलेंगे वो सिद्ध होता जाएगा, जितनी बार बोलेंगे वो आपके साथ बढ़ता जाएगा। आप कहो मुझे तो पेशेंट्स कंप्लीटली आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ बोलना है, उसके बाद रिजल्ट देखना है, उसके बाद रिजल्ट देखना है। तो माई एवरी रिलेशनशिप स्टैंड्स ऑन ट्रस्ट, माई एवरी रिलेशनशिप इज इन हार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट फिनिश्ड। और अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उनका नाम के साथ संकल्प बनाएंगे, किसी के साथ थोड़ी सी टक्कर है उनके नाम के साथ संकल्प बनाएंगे, दे एंड आई गेट अलोंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल, ये मेरा सबसे बढ़िया रिश्ता है। हम संकल्प क्या करते हैं, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं कितनी भी कोशिश करो कुछ होता नहीं है ठीक। नेगेटिव अफर्मेशंस हमारी नेचुरल थॉट प्रोसेस में चल ही रहा है, संकल्प से सिद्धि मतलब कॉन्शियसली उसको दूसरी एनर्जी पे कन्वर्ट करना है। फिर एक संकल्प अपनी बॉडी के लिए, माय बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज, हमेशा शरीर स्वस्थ निरोगी हमेशा, हमेशा वर्ड जरूर लिखना है। सारा दिन बीमारियां देख देख के लगता है कि बीमार होना नॉर्मल है। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। अगर बॉडी में कुछ भी पैरामीटर है उसका अलग संकल्प बनाए। इट वर्क्स लाइक मैजिक, बट इट्स नॉट मैजिक, इट्स यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। कुछ भी, ब्लड प्रेशर हाई है लिख दीजिए, माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल 120/80। इंस्ट्रक्शन विद, आपके लिए तो ये सब कुछ बहुत ईजी है करना, विद फिगर लिखना है आपको क्या चाहिए। माय शुगर लेवल इज नॉर्मल, फिगर लिख दीजिए। और जब आप थोड़े दिन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ना, फिर जब आप किसी का इलाज करेंगे, आप उनको बताएंगे आपका ये वाला पैरामीटर इतना है, हम दवा दे रहे हैं उसके लिए, साथ में आप ये संकल्प रोज करना शुरू करो कि मेरा ये पैरामीटर परफेक्ट है, वैल्यू हमको इतनी चाहिए, दे दो उनको। अभी आपको लगेगा नहीं, एज अ डॉक्टर हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जब वो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा आपको पता है कि वो हीलिंग को कितनी जल्दी बढ़ाएगा दूसरे की, एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग इट। वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स, दे राइट इट एंड गिव इट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, ये संकल्प करो साथ साथ दवाई के। स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस ऑफ द पावर ऑफ द माइंड। ये नहीं सोचना ओहो ये तो साइंटिफिक नहीं है, इट इज द साइंस ऑफ द पावर ऑफ द माइंड। एंड व्हेन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस विल कम टुगेदर, मिरेकल्स इन हीलिंग विल स्टार्ट बिकमिंग अ नॉर्मल वे, कभी कभी नहीं। एंड ये शक्ति भारत के पास है। सिर्फ जो किताबें कहीं और लिखी, सिर्फ जो पेपर कहीं और बने, सिर्फ उसी पर चलते जाना, उससे सीखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना, लेकिन आगे मिरेकल अपने क्रिएट करना। आप जब किसी पेशेंट को किसी दवाई के साइड इफेक्ट बताते हैं, वो इंफॉर्मेशन को अगर एज इट इज ले लेता है तो उसके ऊपर वो होने ही वाला है। आपको याद है 25-30 साल पहले पेशेंट को इंफॉर्मेशन कम दी जाती थी, होता था ऐसे कि नहीं होता था? मतलब किसी को कैंसर था उसको पता नहीं था ये कैंसर है उसको, तब में और अब में बहुत फर्क है। अब जितनी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है उतनी बॉडी के ऊपर उस इंफॉर्मेशन का क्या होता जा रहा है, असर होता जा रहा है। तो डॉक्टर का रोल है इंफॉर्मेशन देना इन द राइट वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन देना बट इन द राइट वोकैबुलरी, जिससे उसकी हीलिंग होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस अपने साथ करनी है। तो एक हो गया संस्कार के लिए संकल्प, एक हो गया शरीर के लिए संकल्प, एक हो गया रिश्तों के लिए संकल्प, एक हो गया समय के लिए संकल्प। आई एम ईजी एंड आई हैव मोर टाइम देन आई नीड, टाइम एंड आई गेट अलोंग एक्सट्रीमली वेल। मैं ईजी हूं, मेरे पास भरपूर समय है, समय और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। अगला संकल्प, कभी कभी हमें लगता है ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये कब करना है, कब करना है। सिंपल संकल्प, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द राइट वे, इन द राइट मैनर, एट द राइट टाइम। सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है, सही विधि से हो रहा है और सही समय पर हो रहा है, ना पहले ना बाद में। Everything that's happening with me is perfect, in the perfect manner, at the perfect time. अब जैसे ही आप ये संकल्प रोज रिपीट करेंगे, आपके निर्णय सही होने लग जाएंगे। ये करें या ये करें, अभी करें या बाद में करें, इस साल करें या अगले साल करें, Intuition will start working with you. एक लाइन ब्लैंक छोड़े फॉर एनी सिचुएशन इन लाइफ जिसका संकल्प आप बनाएंगे। जो भी सिचुएशन जैसे आए ना, जैसे सिचुएशन आए पहले उसका संकल्प बना दीजिए उस सिचुएशन के लिए। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर संकल्प देते हैं, आप इसके साथ वर्क करके देखिएगा। जैसे ही सिचुएशन आए पहला संकल्प क्रिएट कीजिए, ये हमारे कल्याण के लिए आई है, दिस सिचुएशन हैज कम फॉर माई बेनिफिट। अब जैसे ही हम ये लाइन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन नीचे और हम ऊपर हो जाते हैं। ये मेरे कल्याण के लिए आई है। किस किस के लाइफ में एक्सपीरियंस है कि कुछ हुआ था जो ठीक नहीं लगा था, लेकिन कुछ सालों के बाद कहा वो जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए। आओ हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, उठा के रखना 10 सेकेंड, आगे पीछे मुड़ के देखो, टर्न एंड सी, दिस इज द परसेंटेज। लेकिन जिस समय हुआ था उस समय हमने क्या बोला, ये सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। उस समय अगर हमने बोल दिया ना ये बिल्कुल सही हुआ, डेस्टिनी विल मूव इन अनदर डायरेक्शन। सिचुएशन के साथ अपना रिश्ता बनाना शुरू कीजिए। ये मेरे कल्याण के लिए आई है। ब्लेस एवरी सिचुएशन। सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाएगी, सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाएगी, वो आपके कल्याण की तरफ मूव करनी शुरू हो जाएगी। अब एक लाइन अपनी सिचुएशन, हर एक सोच ले 10 सेकेंड, अभी लिख ले, वोकैबुलरी राइट होनी चाहिए, जो चाहते हैं कि हो हमें लिखना है कि वो हो चुका है। कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना लिखना है वो बन चुका है। थोड़े दिन में ना ये प्रैक्टिस हो जाती है ये करने की, फिर हमारी वोकैबुलरी ये बन जाती है सारा दिन। नेक्स्ट संकल्प, एवरी पेशेंट इंटरैक्शन इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। एवरी पेशेंट इंटरैक्शन इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। मतलब जो हम इलाज करेंगे वो तो परफेक्ट होगा ही, लेकिन वो इंटरैक्शन एक डिवाइन एक्सपीरियंस बनता जाएगा, हमारे लिए नहीं सिर्फ उनके लिए भी, उनके लिए भी। अगर आज सुबह आपके आइटिनरी पे ये है कि आपने किसी की सर्जरी करनी है, कोई प्रोसीजर करना है, कुछ करना है, आपने सुबह उसके लिए संकल्प करके जाना है कि दिस सर्जरी विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस। आपको सब कुछ आता है वो तो परफेक्ट है, लेकिन उसके लिए एक एनर्जी भी तो क्रिएट करके जानी है, दिस सर्जरी विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस। एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखें, हर सर्जरी से पहले सब कुछ रेडी हो गया, सब रेडी हो गया, जस्ट बिफोर यू स्टार्ट 10 सेकंड के लिए सारे जो उस टीम में हैं सब 10 सेकंड के लिए साइलेंस में खड़े होंगे और 10 सेकंड के लिए कलेक्टिव सेम थॉट क्रिएट करेंगे। हर एक अपने अपने रीति से भगवान को याद करके आता है, लेकिन जब हम इकट्ठे मिलके करते हैं कलेक्टिव राइट देयर, वो उस ओटी की वाइब्रेशन बनने शुरू हो जाती है। उस प्रोसीजर से पहले आप करें, सिर्फ ऐसे ही जाके करना नहीं शुरू कर देना है। यूजिंग द पावर ऑफ वाइब्रेशन इन हीलिंग, सारे इकट्ठे हो जाएं, वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट डिवाइन पावर, वो हमें यूज कर रहा है और वो हमें यूज करके इस सर्जरी को तो सफल होना ही है, लेकिन दिस सर्जरी विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। 10 सेकेंड सर्जरी शुरू करने से पहले, 10 सेकेंड सर्जरी पूरी होने के बाद ग्रैटिट्यूड इकट्ठे, और ग्रैटिट्यूड देके एक संकल्प क्रिएट करना है कि ये आत्मा परफेक्टली हील्ड होके बहुत जल्दी घर पहुंच चुकी है, अब आपकी सर्जरी के बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मतलब हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स। दुआओं के लिए कहा जाता है दुआएं असंभव को संभव करती है, राइट है बात? दुआएं असंभव को संभव करती हैं, क्योंकि दुआ क्या है, दुआ मतलब हाई एनर्जी वर्ड। तो 10 सेकंड करने शुरू करने से पहले, 10 सेकंड पूरा होने के बाद, कई डॉक्टर्स जिन्होंने ये शुरू किया तो अब उनकी यूनिट को इतनी आदत पड़ जाती है कि किसी दिन डॉक्टर भूल जाता है तो नर्स याद दिलाती है, डॉक्टर साहब हमने किया नहीं हमारा 10 सेकंड प्रेयर। इट इज अ कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द सेम थॉट, वो सबकी एनर्जी को अलाइन करती है, वो आपके उस कमरे की एनर्जी को चेंज करेगी। ऐसा भागते 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 आके नहीं करना है शुरू, 10 सेकंड से कुछ लेट नहीं होगा, 10 सेकंड में एनर्जी चेंज होती है, 10 सेकंड में। एक बार हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक भाई था उसके पास एक मशीन थी जिससे ऑरा दिखाई देता है, वो ऐसे ऐसे ही था, तो ऑरा जैसा होगा ना वो उस तरफ मूव हो जाएगा, तो सब डॉक्टर्स ही बैठे थे। उसने कहा चलो कोई एक जना आओ टेस्ट करते हैं आपका ऑरा कितना है, तो एक डॉक्टर आ गए स्टेज पे, आए सबके सामने, उन्होंने वो मशीन लगी और ऐसे दिखाया, उन्होंने कहा इनका ऑरा तो बहुत अच्छा है, इनकी एनर्जी फील्ड 10 फीट तक इम्पैक्ट करती है, तो ऑरा जितना पावरफुल होगा उतना वो दूर तक भी इन्फ्लुएंस करेगा। फिर उन्होंने बहुत वंडरफुल चीज की, उनको बोला आंख बंद करो, लास्ट टाइम जब गुस्सा किया था उसको याद करो, गुस्सा करो नहीं, सिर्फ जब गुस्सा किया था उसको याद करो। उन्होंने गुस्सा जो किया था उसको याद किया, उसके बाद वो देखा वो ऑरा 3 फीट का हो गया था। सिर्फ गुस्सा याद करने से भी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। फिर उनको कहा एक ग्लास पानी लो, पानी को पीना है अभी, पानी पीने से पहले उसमें डालना है मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं, पानी पियो, ऑरा देखो बढ़ गया। एनर्जी बहुत जल्दी ऐसे होती है और बहुत जल्दी ऐसे होती है, इट डजंट टेक इयर्स, इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स। तो ऑपरेशन थिएटर में जरूर कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ का कोई जूनियर घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उसके लिए वो नई चीज है, अभी अभी उसके घर में कुछ हुआ है। पता है लोग अपने घर से बहुत सारी कहानियां लेकर आते हैं जब तक वो पहुंचते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, वो काम हाथों से कर रहे हैं और मन कभी कभी उस स्टोरी के साथ अभी भी है। इट्स रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ओवर देयर। और जब आप ऐसा करेंगे, आप सरेंडर करेंगे, माइंड को शांत करेंगे, आपकी हीलिंग में, आपकी सर्जरी में इंट्यूशन बढ़ती जाएगी, इंट्यूशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने शांत मन से स्टार्ट किया है, सिर्फ परफेक्ट बाहर स्टार्ट नहीं किया। कर सकते हैं 10 सेकेंड्स? कौन कौन कर सकता है 10 सेकेंड्स? छोटी सी अपनी संकल्प की प्रेयर लिख लेनी है, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन पावर। ये हर रिलीजन कर सकता है, तो इसमें कोई रिलीजन की तो कोई बात नहीं आती है। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट डिवाइन पावर, गॉड इज यूजिंग अस टू क्रिएट अ डिवाइन सर्जरी। बस स्टार्ट, एनर्जी चेंज। वो जो सर्जरी टेबल पे लेटा हुआ है वो भगवान को याद करके आया, उसकी फैमिली बाहर वैसे ही ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, वो जिसने करना है उसको पहले करना चाहिए। तो 10 सेकेंड्स पहले, 10 सेकेंड्स बाद में, 1 सेकेंड बिफोर एवरी पेशेंट इंटरेक्शन, 1 सेकेंड। आप बताना इनके लिए क्या सही है। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम राइटिंग, आप डिक्टेट करना। आप बोलो उसको, आई एम राइटिंग, आप डिक्टेट करना। 1 सेकेंड लगता है इतना सारा बोलने के लिए। सो एवरी पेशेंट इंटरेक्शन इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। फिर लास्ट, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं, मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच रोज पहनना है, विच मीन्स ड्रॉ अ वाइट लाइट डिवाइन एनर्जी सर्कल अराउंड यू, क्रिएट अ हाई वाइब्रेशन एनर्जी सर्कल, God's power and blessings is a divine circle of protection around me. परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? हाँ जी? नहीं, जैसे ही आप ये सुरक्षा कवच ड्रॉ करते हैं, अब दूसरे की जो एनर्जी आ रही है वो सुरक्षा कवच के बाहर तक आके रुक जाएगी, अंदर नहीं आ सकती हो, क्योंकि वो हायर एनर्जी सर्कल है, उसमें लोअर एनर्जी नहीं जा सकती, और ये हायर एनर्जी की सर्कल सब तक जा सकती है। आपने देखा अभी उत्तराखंड में फ्लड हुए, पहले भी केदारनाथ में हुए थे, आपको पता है पानी मंदिरों तक आके रुक जाता है, मकान गिर जाते हैं, होटल टूट जाते हैं, आसपास की चीजें टूट जाती हैं, पानी मंदिर तक आकर रुक जाता है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? पानी को कैसे पता चलता है ये मंदिर की बिल्डिंग है या मकान की बिल्डिंग है? वो कैसे पता चलता है उसको, वो वहां तक आके रुक कैसे जाता है? हायर वाइब्रेशन के ऊपर नेगेटिव मतलब उथल पुथल की वाइब्रेशन है ना, वो जो पानी कर रहा है उस समय, वो उधर आकर वहां रुक जाता है। वो मंदिर की वाइब्रेशन सिर्फ हाई नहीं होती, आप रोज करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाने वाली है। तूफान आकर यहां तक रुक जाएगा, प्रॉब्लम्स आकर यहां तक रुक जाएंगी, यहां तक आएंगी और रुक जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को कहां ले लिया? वहां। जब भी कार में बैठे एक सेकंड का थॉट क्रिएट करें, परमात्मा की शक्ति और दुआएं इस पूरी गाड़ी के चारों तरफ है, ना ये गाड़ी किसी को टच करेगी ना कोई इस गाड़ी को टच करेगा, स्मूथ ड्राइव। ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, ड्रॉ दैट सुरक्षा कवच, दैट इज दैट पॉजिटिव हायर एनर्जी। धीरे धीरे वो एनर्जी बिल्डअप होने लगती है ना फिर हमारी, इट डजंट रिमेन एट जस्ट वन थॉट, इट्स नॉट जस्ट वन थॉट। ड्रॉ अ वो सुरक्षा कवच अराउंड योर हॉस्पिटल, परमात्मा की शक्ति और दुआएं इस हॉस्पिटल के चारों तरफ है, एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, एवरीवन इज हील्ड, बैक होम। हर रोज ये ब्लेसिंग दे दो अपने हॉस्पिटल को, परमात्मा की शक्ति और दुआएं इस हॉस्पिटल के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीवन इज हील्ड, एवरीवन इज बैक होम। स्मूथ होने लगेंगे चीजें, स्मूथ होने लगेंगे। माय लाइफ इज परफेक्ट, माय डेस्टिनी इज परफेक्ट, माय लाइफ इज परफेक्ट, माय डेस्टिनी इज परफेक्ट। अब इनमें से सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए, आप 8-10 संकल्पों का अपना एक बंडल बना लो और ये 8-10 संकल्प रोज रिपीट होने हैं। अब इनको रिपीट करने का भी एक टाइम है, फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप। आइडियली एक छोटी सी डायरी अपने पिलो के पास रखो और रात को सोने से पहले अपने संकल्पों को एक बार लिखो, लिखने का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आधे मिनट लगेगा सिर्फ, लेकिन डेस्टिनी चेंज होती जाएगी, मिरेकल्स नॉर्मल वे ऑफ लिविंग होने लगेंगे, नॉर्मल वे ऑफ लिविंग होने लगेंगे। सोने से पहले लिखेंगे, सुबह उठते हुए बोलते हुए, सुबह जैसे ही उठते हैं फर्स्ट थॉट शुक्रिया का चाहिए, तो वो हम हायर एनर्जी पे चले गए। परमात्मा का शुक्रिया, मेरे मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, समय का शुक्रिया। जितनों को शुक्रिया करेंगे उनके साथ रिश्ता अच्छा बनता जाएगा। और फिर उठ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, अपना गाना गाते जाना है, टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना है, टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना है, गाना फिक्स्ड है सुबह का। इजी करना, इजी, इंस्टेड ऑफ आज वो होना है, पता नहीं क्या होगा, उसने ये हुआ, कल ये था, वो पेशेंट कल ठीक नहीं था, पता नहीं आज कैसे होगा। दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू स्टार्ट द मॉर्निंग। अगर आज आपके हॉस्पिटल में, आपके डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट क्रिटिकल था, रात को सोने से पहले आपने संकल्प करना है एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो क्रिटिकल है ये थॉट लेके सो गए तो पूरी रात वो थॉट प्रोसेस होगी। आप सोने से पहले उसको ब्लेसिंग देके फिर सोइए, सुबह पूछिएगा सिस्टर क्या हालचाल है, देखना क्या पता चलेगा, देखना क्या पता चलेगा वहां पर। हीलिंग, दिस इज कॉल्ड हीलिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड हीलिंग। तो अपना 8-10 संकल्पों का बंडल बनाएं, कर सकते हैं सुबह उठते हुए, कल सुबह से स्टार्ट करना है, ये नहीं हो लेट हो गया। सुबह का पहला थॉट, पहले जमाने में हमें पूछते थे किसका चेहरा देखा आज सुबह, सारा दिन गज 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 चल रही है, तो वो किसका चेहरा था, माई मॉर्निंग फर्स्ट थॉट, वो मेरे मन पे सबसे पहले मैंने क्या देखा, तो फर्स्ट थॉट परमात्मा शुक्रिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मेरा हर रिश्ता परफेक्ट है, मेरा हर पेशेंट इंटरेक्शन डिवाइन है, मुझे हर एक ट्रस्ट करता है, मैं एक गाना बन जाएगा अपना। तो ये दो टाइम हो गए, सुबह और रात। तीसरा टाइम जो बहुत पावरफुल है, इसका एक शॉर्टर वर्जन बनाना 5 संकल्पों का, हर खाने और पानी से पहले। आप हॉस्पिटल में खाना खाते हैं, इवन इफ यू आर कैरिंग इट फ्रॉम होम, वो हॉस्पिटल है, आप पानी भी हॉस्पिटल का पीते हैं, तो आपके पानी में क्या है, आपके पानी में क्या है, पेन है। कभी भी पानी ऐसे नहीं पीना, कभी भी पानी ऐसे नहीं पीना। आपको याद है हर रिचुअल में पानी को यूज किया जाता है, राइट? क्या करते हैं पानी लेके, ऐसे लेते हैं पानी, फिर उसमें मंत्र बोलते हैं, फिर वो पानी को क्या करते हैं, तो वाई वॉटर, बिकॉज वॉटर अब्सॉर्ब्स दैट वर्ड। तो पानी से शुद्धिकरण किया जाता है, तो सबसे पहले तो पानी का शुद्धिकरण करना है। कितने भी आप बिजी हो, कितने भी मतलब कितने भी, जैसे आप हाथ धोए बिना नहीं काम करते, आप पानी की एनर्जी को चेंज करे बिना नहीं पीना है उसको। पकड़िए हाथ में, चलो लेट्स होल्ड योर ग्लास ऑफ वाटर, पकड़े। ऐसा देखना वेखना नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस पानी पीने से पहले शॉर्ट 2 seconds, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम परफेक्ट हेल्दी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे साथ है, खत्म। टाइम लगा? ये तो बोला इसलिए टाइम लगा, सोचेंगे तो इतना भी टाइम नहीं लगने वाला है। पी लो जिसके जिसके पास पानी है। ये आपको थोड़े दिन करना है और थोड़े दिन करने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। भारत की संस्कृति में तो यह हजारों साल से है कि जैसा पानी वैसी वाणी, तो पानी शुद्ध होना चाहिए। हॉस्पिटल का पानी वाइब्रेट्स विद पेन एंड फियर, वाइब्रेट्स, तो कभी भी नहीं पीना है, ठीक है? दिस इज डन, इट्स पॉसिबल। खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 2-2 सेकंड रुक के करना है। रात को अच्छे से लिखना है आधा मिनट लेके, सुबह गाना गाते गाते अपना काम करना शुरू कर देना है और आपकी संकल्प से सिद्धि शुरू हो गई है। और जीवन में जो जो बातें आती जाएं, सबसे पहले उसका संकल्प इस लिस्ट में ऐड करते जाना, बाद में उसके ऊपर काम करेंगे। इजी, सहज। कब करेंगे इसको? अब आज सोने से पहले, कल सुबह उठते ही, अभी रात को खाना खाने से पहले। हाँ जी, पानी पीने से पहले। खाना खाने के साथ पानी नहीं पीते वैसे। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें पेशेंट को बताना शुरू करो। लोग कोक पीते और साथ में खाना खाते हैं आजकल, कैसे कैसे करते हैं चीजें। हाउ इज द फूड गोइंग टू वर्क विद द बॉडी? We can't just write to them what is the right thing to eat, how to eat, what to eat, how to cook. एक चीज अपने घर में और हॉस्पिटल में करें, रसोई के अंदर हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए। इसको तो मैंडेटरी आप कर दो, कंपल्सरी। बिल्कुल जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है और गुरुद्वारे में लंगर बनता है, वैसे आपके घर का खाना और आपके हॉस्पिटल में खाना बनना चाहिए। हीलिंग हो रही है, आप चाहते हैं वो जल्दी घर जाएं, तो डायटिशियन सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, खाने का वाइब्रेशन चेक करें। आपके हॉस्पिटल में अगर खाना बन रहा है तो वहां पे चीखना चिल्लाना अलाउड नहीं होना चाहिए। आप उनको जिम्मेवारी याद दिलाएं अपनी कि आप जिस तरह से खाना बनाएंगे ना, वो सब ठीक होने वाले हैं। आप प्रसाद बनाइए, टीच देम, दे विल स्टार्ट डूइंग इट। और फिर हाई एनर्जी वर्ड्स, जो भी हाई एनर्जी वर्ड रसोई में चलना चाहिए। क्या हम अपने घर में ये कर सकते हैं? क्या हम अपने घर में ये कर सकते हैं? खाने की वाइब्रेशन चेंज होगी, घर में रहने वालों का मन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी खुद खाना नहीं बनाते होंगे, शायद टाइम नहीं मिलता होगा। तो कम से कम जो बना रहा है उसको सिखाना है, और हाई एनर्जी वर्ड्स रसोई में चलने ही चाहिए। पूरा दिन भी चले तो अच्छा, सॉफ्ट वॉल्यूम पे पूरा दिन चले तो भी बहुत अच्छा। पानी, अनाज, फ्रूट, सब्जी, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट अब्सॉर्बिंग इट, क्योंकि सब कुछ दर्द से आ रहा है। आज किसान दर्द में है। नीचे एक गार्डन है जिसका नाम तपोवन है, अगर टाइम मिले तो जाते हुए देखते हुए जाना। इस विद्यालय में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, यौगिक खेती, बता दिया आज ना, बस। तो वो नीचे से आप देखते हुए जा सकते हैं, और इसका प्रूफ हम सबके पास है। अगर आप बाजार की सब्जी लो और आपने खुद अपने गार्डन में सब्जी उगाई है, दोनों में कोई फर्क होता है? क्या फर्क है? वो बाजार वाला तो किसान को ज्यादा अच्छा आता होगा ना, लेकिन जो घर में उगती है वो प्यार से उगती है, उसको वाइब्रेशन मिलती है, उसको केयर मिलता है, वो तो जनरल बन रही है। जहां तक हो सके घर का ही खाना खाना चाहिए। बाहर का खाने में हमें नहीं पता होता कौन सी मनोस्थिति है, कौन सा वाइब्रेशन है। अन्न का मन पर असर इज अ बिग साइंस, बिग साइंस। तो इसलिए रसोई में अपनी और हॉस्पिटल दोनों ये करना है। तो ये 5 टाइम हमें संकल्प रिपीट करने हैं, मॉर्निंग, नाइट, 3 टाइम्स फूड, एवरी टाइम वाटर। इतनी आदत पड़ जाती है, आधी रात को उठ के भी पानी पीते तो ऐसे नहीं पीते। It just becomes a sanskar and goes into the auto mode. goes into the auto mode. चले सीधा होकर बैठे, फिर हम कल सुबह के सेशन में मेडिटेशन करेंगे कैसे करनी है. आज का डिनर साइलेंस में करते हैं. इज दैट ओके? यस, करेंगे. कौन कौन रेडी साइलेंस में आज खाना खाने के लिए? हाँ, बिल्कुल मौन में, अपने साथ, अपने संकल्प. ये संकल्प जो है अपने बच्चों के लिए भी बनाना है वापस जाके. और अगर वो नहीं मान रहे करने के लिए तो आप उनके लिए कर सकते हैं. पहले आप उन, और सबसे अच्छा संकल्प डाल दीजिए कि मेरे बच्चे संकल्प करते हैं, ये डाल दो तो वो अपने आप करना शुरू कर देंगे. वो अपने आप, एंड घर पे अगर खाना कच्चे खाते हैं देन मेक इट अ प्रैक्टिस. खाना आया, 5 सेकेंड हम सब रुकेंगे और अपने संकल्पों को रिपीट करेंगे. एक और संकल्प ऐड कर दीजिए, हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर स्वर्ग है. चीजें बदलती जाती हैं घर के अंदर, रिश्ते ठीक होने लग जाते हैं, एनर्जी चेंज हो जाती है. हमारा घर स्वर्ग है. तो चलिए सीधा बैठे, बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे. आप अभी मन में अपने संकल्पों को रिपीट करें जितने याद है, लेकिन सिर्फ संकल्प नहीं दोहराना, खुद को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट. सिर्फ जेंटली रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा, सदा खुश रहने वाली आत्मा, हर परिस्थिति में शांत और स्थिर, शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी, हर रिश्ता मजबूत है, संपूर्ण विश्वास की नींव पे टिका है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, हर परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आती है, सब कुछ जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट तरीके से हो रहा है और परफेक्ट समय पर हो रहा है. परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है. इसको ड्रॉ करना है, व्हाइट डिवाइन लाइट सर्कल अराउंड मी. मैं आत्मा परमात्मा का फरिश्ता हूं, सबको हील करने वाला फरिश्ता. वो मुझे यूज करके अपनी शक्ति हर एक को देते हैं. आई एम द इंस्ट्रूमेंट. अब जैसे जैसे हम चलते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ जाएंगे, अपने जीवन को स्कैन करें, अपने बच्चों की लाइफ को देखें और जो 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 बातें लगे उसका संकल्प बनाते जाएं. थोड़े दिनों में ये संकल्प संकल्प नहीं, सारा दिन की सोचने और बोलने की भाषा बन जाएगी.